हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी की तबीयत को देखते हुए हरलीन को डाउट हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो आंशी से बात करने के लिए उसे विला के बाहर लेकर आई। हरलीन ने आंशी से सब कुछ सीधे सीधे पूछ लिया और आंशी ने भी उसे अमन के बारे में बता दिया था। हरलीन ने अपने दिल में हुए डाउट को आंशी को बताया कि उसे लगता है आंशी प्रेग्नेंट है। आंशी ने इस बात को काफी हल्के में लिया। वो दोनों बात करके अंदर की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें विधिक दिखाई दिया। अचानक विधिक को अपने सामने देखकर एक पल के लिए हरलीन और आंशी दोनों के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। आंशी ने डर के मारे हरलीन का हाथ पकड़ लिया। तभी विधिक उसके पास आया। विधिक ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको बाहर निकलने की परमिशन दी थी और अब देखो पूरे 45 मिनट से आप दोनों बाहर हैं। आखिर क्या बातें चल रही थीं आपके बीच में, मुझे भी तो पता चले। वो हम शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। तुम तो जानते हो ना, लड़कियां इन सबको लेकर ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं, आंशी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। उनकी बातों पर विधिक ने हामी सिर हिलाया और फिर आंशी की तरफ देखकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बटरफ्लाई तुम्हारी नाक लाल हो रही है, मतलब तुम्हें जुकाम हो रहा है, चलो अभी अंदर चलते हैं। विधिक की बातों से हरलीन और आंशी को साफ हो गया था कि विधिक ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी हैं। आंशी ने मुस्कुराकर विधिक की बात पर हामी भरी और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। अंदर जाते हुए आंशी ने मुड़कर हरलीन की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने को कहा। विधिक आंशी को अंदर लेकर जा रहा था, तभी वो तेज आवाज में बोला, बुआ आपको स्पेशल इन्विटेशन देना होगा या आप ऐसे ही अंदर आ जाएंगी? जानता हूँ आपको बाहर ठंड में रहना पसंद है, पर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। विधिक, मुझे कुछ याद आया है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, तुम दोनों अंदर चलो, मैं कुछ देर में आती हूँ, हरलीन ने जवाब दिया और उसी वक्त गाड़ी लेकर बाहर चली गई। वो अपना डाउट क्लियर करना चाहती थी, इसलिए हरलीन आंशी के लिए प्रेग्नेंसी किट और बाकी सामान लेने जा रही थी। वहीं आंशी विधिक के साथ अंदर आ चुकी थी। हरलीन ने जो भी कहा था उसके बाद से उसके दिल में डर बैठ गया था कि अगर आंशी सच में प्रेग्नेंट हुई तो विधिक ना जाने उसका क्या हाल करेगा। अंदर आने के बाद विधिक ने आंशी के चेहरे को देखकर कहा, क्या हुआ बुआ, ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो रही हो? एक डर लग रहा है दिल को, आंशी ने विधिक की आंखों में देखते हुए कहा। पिछली बार शादी हुई थी तो सब अनजाने में हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हें अच्छे से पता है सब अचानक से हो गया था, लेकिन इस बार नर्वसनेस फील हो रही है। आंशी की बात सुनकर विधिक ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी ना बटरफ्लाई बेवजह का स्ट्रेस ले रही हो, कौन सा शादी के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी जो इतना घबरा रही हो? हाँ, एक चीज चेंज होने वाली है और वो है हम दोनों के बीच का रिश्ता। शायद फिर हम दोनों के बीच सांस लेने तक की जगह ना रहे और हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं। बोलते हुए विधिक ने आंशी को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके कंधे पर सिर रखकर गर्दन पर किस करने लगा। विधिक के इतना करीब आने पर आंशी को अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वो कह भी नहीं सकती थी। आंशी ने अपना चेहरा विधिक की तरफ करके कहा, हाँ हमारा रिश्ता बदल जाएगा, शायद इसी चीज की नर्वसनेस हो रही है। तब तो मैं तुम्हारी नर्वसनेस समझ सकता हूँ बटरफ्लाई, हम एक दूसरे के क्लोज तो पहले भी आए हैं लेकिन उस तरह से भी नहीं, तुम्हारा सब कुछ फर्स्ट टाइम होने वाला है तो थोड़ी नर्वसनेस बनती है, विधिक ने जवाब दिया। फिर वो आंशी की तरफ देखकर बोला, मैंने आज तक इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं और भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, तुम मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की नहीं हो लेकिन आखिरी लड़की जरूर बनने वाली हो, तुम्हारे आने के बाद मैंने किसी के करीब जाने का सोचा तक नहीं। आंशी बस चुपचाप विधिक की बातों का हाँ या ना में जवाब दे रही थी, उसके अंदर काफी कुछ चल रहा था। हरलीन की बातों से वो अपसेट हो गई थी। काफी देर बात करने के बाद आंशी ने विधिक से कहा, विधिक मैं बहुत थक गई हूँ, क्या कुछ देर के लिए सोने जा सकती हूँ? कम ऑन बटरफ्लाई, अब सोने जैसी चीज के लिए तुम मुझसे परमिशन लोगी क्या? मैं वैसे भी ऑफिस एरिया में जा ही रहा था, यू जस्ट रिलैक्स, विधिक ने जवाब दिया और फिर आंशी के फोरहेड पर किस करके वहां से चला गया। विधिक के जाते ही आंशी लेट गई। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। आंशी ने अपने मन में कहा, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो मुझे वहां जाते ही सबसे पहले अमन से कॉन्टैक्ट करना होगा, मुझे विधिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढने हैं और ना ही उसे कल्प्रिट साबित करने में कोई इंटरेस्ट है, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। सोचते हुए आंशी को नींद आ चुकी थी। विधिक अपने कामों में लगा था जबकि हरलीन शॉपिंग करके अंदर आ चुकी थी। अब उसे कैसे भी करके विधिक की नजरों से छुपकर आंशी को वो प्रेग्नेंसी किट देना था। रात को डिनर के वक्त हरलीन आंशी के पास बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा आंशी, डिनर के बाद तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलना, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारी शॉपिंग की थी। आंशी समझ गई थी कि हरलीन का इशारा किस तरफ है, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी थी। वहीं उनकी बातें सुनने के बाद विधिक ने कहा, बुआ, आप चाहें तो बटरफ्लाई को भी अपने साथ लेकर जा सकती हैं। बटरफ्लाई को ट्रेडिशनल वेडिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ डिजाइनर्स को घर बुला लूंगा। ये अपने हिसाब से सब कस्टमाइज करवा लेती, लेकिन कुछ और चाहिए तो बुआ के साथ बाहर चली जाना। विधिक की बातों से साफ था कि अब वो आंशी पर पूरी तरह यकीन करने लगा था। ये आंशी की ही मेहनत का फल था। डिनर के बाद हरलीन आंशी को रूम में लेकर गई और उसे दो प्रेगनेंसी किट देते हुए कहा, इन्हें विधिक की नजरों से बचाकर रखना। सबसे जरूरी बात, रिजल्ट जो भी रहा हो विधिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं दो किट लेकर आई हूँ ताकि किसी तरह का डाउट न रहे। थैंक यू सो मच बुआ, आंशी ने नम आंखों से कहा और हरलीन के गले लग गई। इस वक्त वही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। हरलीन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आंशी से अलग हो गई। उन्होंने आंशी से कहा, मैं तुम्हारी यहीं तक हेल्प कर सकती हूँ आंशी, उसके आगे नहीं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। विधिक को पता चले उससे पहले तुम ये अबॉर्शन पिल्स लोगी और इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करोगी। विधिक के सामने कुछ नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती तुम दोनों की लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम हो। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी वक्त रहते सब भूल जाओगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आंशी ने उस वक्त हरलीन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप दवाइयां और किट को छुपाकर अपने कमरे में लेकर गई।